Om Shanti. A very warm welcome to Sudhaben, Jo. बहुत शॉर्ट नोटिस में और तुरंत ही हाँ कह दिया और फिर सेशन का टाइम चेंज किया तो भी उसने तुरंत ही तो वेरी वेरी फ्लेक्सिबल हाँ एक अच्छा गुण सीखने को मिला. सुधा बेन 46 साल से ज्ञान में है और ज्ञान उसको दिल्ली कमला नगर सेंटर में मिला था जहाँ आप सबको याद है जगदीश भाई हमारा सेवाएं देता था. तो जगदीश भाई के साथ बचपन से उन्होंने बहुत सेवाएं की है तो वो भी उसका सौभाग्य है. हमको भी जगदीश भाई का अनुभव है लंदन में जब आए थे तो बहुत अच्छा लगा था. तो आप तो बहुत बहुत फॉर्चुनेट हो जो इतना सारा समय उनके साथ आपको सेवा करने का मौका मिला. सुधा बेन दिल्ली यूनिवर्सिटी में मास्टर्स डिग्री इन साइंस और एमएससी बीएड और उनकी दो बहनें हैं जो बॉम्बे में समर्पित हैं. सुधा बेन पिछले 39 साल से समर्पित जीवन बिता रही है और पिछले 24 ईयर से रशिया में हैं. और बहुत अच्छी विशेषता ये है उन्हों की कि रशिया में भी सबको अपना भारतवासी जैसा बना दिया है ना. सब तरह से पहनने का ढंग कैश करने का ढंग सब कुछ. और दादी तो बहुत बहुत महिमा करती है दादी जान की कि सचमुच उन्होंने बहुत मेहनत करके सब कुछ सिखा दिया इतने तक के डांसिंग गरबा सब कुछ तो वो उनकी विशेषता है. और उसने बहुत बहुत कंट्रीज भी विजिट किया है साउथ अमेरिका में ब्राजील अर्जेंटीना कोलंबिया चिली वगैरह. अमेरिकाज में लंदन भी आई थी हमारे पास शायद कृष्णा बेन को मालूम होगा. यूरोपियन कंट्रीज में भी बहुत सारी सेवाएं दी है और श्रीलंका में भी तो माना के वर्ल्ड ट्रैवलर. तो वेलकम सुधा बेन एंड उसका आज का टॉपिक है पवित्रता की गहराई.
ओम शांति. मोबाइल की आवाज ने ध्यान दिला दिया. अगर किसी का मोबाइल ऑन हो तो उसको ऑफ कर दीजिए. सृष्टि चक्र में जो बाबा ने हमको ज्ञान दिया है उस ज्ञान की अब विस्तार बहुत है. बाबा बार बार हम बच्चों को कहते हैं चक्र फिराओ स्वदर्शन चक्रधारी बनो मुझे याद करो चक्र में भी मुझे याद करो. लेकिन अगर उस चक्र के विस्तार के ज्ञान को सार में चेंज करें तो दो शब्द का ज्ञान है. सिर्फ दो शब्द का है ये पूरा ड्रामा. ये दो शब्दों का खेल है ना. सिर्फ दो शब्दों का. और वो दो शब्द कई तरीके से कहे जा सकते हैं लेकिन अगर आज के विषय को लेकर के हम कहें इस ड्रामा का अगर हम डिस्क्रिप्शन दो शब्दों में आज के विषय अनुसार करना चाहें तो कहेंगे ड्रामा क्या है ये पवित्रता और अपवित्रता का खेल है. ऐसा ही है ना. पवित्रता और अपवित्रता का या फिर इसी बेसिस पर ही पूज्य और पुजारीपन का ये खेल है. तो बाबा ने हमको ये राज समझा दिया है. ड्रामा तो ड्रामा है लेकिन ड्रामा में गिरावट आत्मा की क्यों होती है. जीवन में दुख और बीमारी क्यों आती है. जब सतयुग था तो दुख नहीं था बीमारी नहीं थी. और उसके बाद जब द्वापर युग शुरू हुआ तो दुख और बीमारी प्रारंभ हो गए. तो बाबा ने उसका कारण हमको बता दिया है कि कारण है तब पवित्रता थी और फिर अपवित्रता आ गई. बीमारियां आई ही अपवित्रता के कारण है. लोग तो आज किसी को अगर पूछते हैं कि भी क्यों दुनिया में इतनी बीमारियां हैं तो लोग कहते हैं कि इकोलॉजी ठीक नहीं है वातावरण ठीक नहीं है खाना पीना ठीक नहीं है, हवा पानी ठीक नहीं है, कई तरीके के दूसरे कारण ढूंढते हैं। लेकिन हवा पानी क्यों ठीक नहीं है, खाना पीना क्यों ठीक नहीं है, तो उस सब का कारण उनको किसी को मालूम नहीं है। तो उसका कारण बाबा ने हमें बताया है कि वो अपवित्रता है। इसलिए बाबा आया है संगम युग पर हमें पवित्रता का मार्ग दिखाने के लिए। सुख शांति तो दुनिया में सब चाहते हैं, लेकिन बाबा ने एक फॉर्मूला बता दिया है, और वो फॉर्मूला है कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। जब तक पवित्रता नहीं होगी, तब तक सुख और शांति, कितना भी धन हो, कितने भी बड़े बड़े मकान हो, कितना भी ऊंचा स्टेटस हो, कितनी भी ऊंची पोजीशन हो, सुख शांति नहीं हो सकती है। पवित्रता ही सुख शांति की जननी है, ये फॉर्मूला है। तो जितनी पवित्रता है उतना सुख शांति है। तो कोई लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, ब्राह्मणों से, कि आप लोग कहते हो कि आप पवित्र जीवन जीते हो, है ना, इसमें तो कोई शक नहीं, ब्राह्मण जीवन माना ही पवित्र जीवन, हमारी पढ़ाई का लक्ष्य ही है पवित्र बनना। हमारी पढ़ाई पवित्रता के बिना एक्चुअली प्रारंभ ही नहीं होती है, शुरू ही वहां से होती है। बाकी जो कोर्स करते हैं वो एक अलग बात है, पढ़ाई हमारी मुरली है। जब तक पवित्रता नहीं आई तो मुरली अंदर जाती नहीं है, अंदर घुसती नहीं, मुरली की गहराई हमको समझ में नहीं आती है। तो कोई लोग इसलिए प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग तो पवित्र जीवन जीते हो, आप ब्राह्मण हैं, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि आपका जीवन सुख शांति से भरपूर है, आप सुखी हैं और आप शांत हैं सदा? ये प्रश्न है। प्रश्न है, आप पवित्र जीवन जीते हैं, और अगर पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो क्या पवित्रता जननी माँ आपके पास अगर है, तो सुख और शांति रूपी दोनों बच्चे आपके साथ सदा हैं? या कभी कभी दुख, चिंता, परेशानी, टेंशन, अशांति, कभी ना कभी थोड़ा बहुत आ जाता है, क्या कहेंगे, आ जाता है, नहीं आता है, नहीं आता है, किसको नहीं आता है, किसको, एक एक को नहीं आता है, बाकी सबको आ जाता है, थोड़ा थोड़ा सबको आ जाता है, किसी को ज्यादा, किसी को कम, किसी को रोज, क्योंकि परिस्थितियां तो बहुत हैं, है ना, कभी शरीर की परिस्थिति होती है, कभी धन की होती है, कभी संबंधियों की होती है, कभी प्रकृति की होती है, कई प्रकार की परिस्थितियां आती हैं, तो उन परिस्थितियों में हमारी स्वस्थिति थोड़ी हिल जाती है, हिल जाती है, हिल जाती है। हमारी स्वस्थिति तो है कि मैं सदा, हमें सबको ज्ञान है मैं आत्मा हूं, और आत्मा के सात गुण हैं, ठीक है, आत्मा के सात गुण हैं, ओरिजिनल आत्मा के अनादि गुण सात हैं, हमें सबको मालूम है। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप हूं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, सबको मालूम है ना, ये बात तो मालूम तो है, लेकिन मैं कितना हूं, कितना हूं, कितना मैं सुख स्वरूप हूं। जब परिस्थिति आती है उस समय मेरा टेस्ट होता है कि मैं कितना स्वरूप हूं। मैं आत्मा अपने से पूछती हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, तो कुछ भी हुआ, अचानक से आप प्लेन में आ रहे हैं, सबका बैगेज आ गया, आपका नहीं आया, आपका नहीं आया, और अगर आया तो वो टूट फूट कर आया, तो क्या होता है, अशांति होती है, कोई प्रकार की परेशानी होती है, चिंता लगती है, या हम फिर भी निश्चिंत रहते हैं। परिस्थितियां तो कई प्रकार की आ जाती है ना। अभी अभी हम लंदन में मान लीजिए या किसी भी देश में किसी भी सेंटर पे दादी आ रही हैं, दादी जान की, आप घर में हैं और जिस समय आप घर से बाहर निकलने लगे उसी समय कोई गेस्ट आ गया, आपको दादी से मिलने जाना है, आपको क्लास अटेंड करने जाना है या कोई प्रोग्राम है और उसी समय ही कोई गेस्ट आ गया, तो उस समय मेरी स्वस्थिति हिलती है या नहीं हिलती है? थोड़ी सी भी बेचैनी होती है या नहीं होती है, ये हमको चेक करना है अपने आप को। इसलिए हमने ये टॉपिक लिया आज के दिन, पवित्रता की गहराई। तो हम सब पवित्र जीवन जीते हैं, सब पवित्र जीवन जीते हैं। तो आज भी बाबा ने हमको कहा था, आज की मुरली में भी अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि पवित्रता को बाबा ने आज स्वच्छता से कंपेयर किया है, पवित्रता माना स्वच्छता। और स्वच्छता को खत्म क्या करता है, बाबा ने आज की मुरली के अनुसार कहा कि काम और क्रोध दोनों बहुत गंदे हैं, वो आत्मा की शोभा को बिगाड़ देते हैं, आत्मा की ब्यूटी को खत्म कर देते हैं दोनों ही। तो अगर हमें थोड़ा सा भी क्रोध इरिटेशन के रूप में भी, चिड़चिड़ेपन के रूप में भी आ जाता है कभी ना कभी, आपने अपनी सीट रखी, अभी तो कोई बात नहीं, हॉल बहुत बड़ा है, बाबा किससे मिलने जाना है, बाबा आएंगे, आप सीट रखे गए, अपना बैग रखे, जब तक आप लौट के वापस आए कोई बैग ही आपका ले गया और सीट पे कोई और बैठ गया, हाँ ऐसा भी होता है, कई तरीके की बातें आती हैं। हाँ तो अगर थोड़ा भी हमको इरिटेशन हो जाता है, क्रोध का थोड़ा सा भी रूप आ जाता है, तो बाबा ने कहा क्रोध और काम ये दोनों आत्मा की शोभा को बिगाड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं दैवी गुण धारण करो, अर्थात पवित्रता माना दिव्यता, पवित्रता माना दैवी गुण। और दैवी गुण की लिस्ट तो बहुत लंबी है, सहनशीलता, धीरज, ये सब दैवी गुण है ना। तो पवित्रता माना दिव्यता। और अगर मैंने सेलिबेसी, मैंने ब्रह्मचर्य का तो पालन किया लेकिन दिव्यता नहीं आई, दैवी गुण नहीं आए, और वो दैवी गुण मेरे व्यवहार में झलकने चाहिए ना, मेरे कर्मों में। मैं कितना भी कहूं कि मेरे में बहुत धीरज है, मेरे में बहुत सहनशीलता है, मैं बहुत रहम दिल हूं, कितना भी हम, मैं बहुत, मेरे में बहुत प्रेम है वगैरह वगैरह, हम कितना भी कहें लेकिन वो दिखाई तो व्यवहार से देता है, जब हम एक दूसरे के कनेक्शन में आते हैं, एक दूसरे से जब हम लेन देन करते हैं तो उस समय हमको मालूम पड़ता है कि मेरे में कितने गुण हैं। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मेरी सब बात मान ली तो मैं तो अच्छा हुई हूं, मैं बहुत मीठा हूं, लेकिन मेरी बात नहीं मानी और दूसरे की मान ली, मैं तब भी मीठा हूं। मुझे लगता है कि मेरी सजेशन बेटर है, दूसरे व्यक्ति की सजेशन इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उसकी सजेशन मान ली गई और मेरी नहीं, तो मेरी मधुरता का चेकिंग वहां होती है, है ना। तो अगर हमने दैवी गुणों पर अटेंशन नहीं रखा, उनको धारण करने पर, तो हमारी पवित्रता की डिग्री कम हो जाती है, क्योंकि फौरन ही हमारी शोभा बिगड़ जाती है, मूड ऑफ हो जाएगा। हमने कुछ नहीं कह रहे किसी को कि मेरा सजेशन क्यों नहीं माना आपने, हमने किसी को कुछ बोला नहीं, लेकिन हम अलग एक कोने में चले गए, मूड ऑफ होकर के, हमारी शोभा, हमारा कर्म, हमारी दृष्टि, वो सब बिगड़ गई। हमारी पवित्रता का जो डिग्री है वो रिड्यूस हो गया। इसलिए बाबा ने आज कहा स्वच्छता माना सुधरा हुआ। अगर मैं स्वच्छ हूं, अगर मैं पवित्र हूं, तो स्वच्छता पवित्रता माना मेरे जीवन में सुधार। कोई भी गंदी आदत न हो, कोई भी। अब हम अपने आप से पूछते हैं कि गंदी आदत किसको कहते हैं? एक होता है विकार, मोटे मोटे ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये मोटे मोटे विकार हैं। लेकिन एक होती है गंदी आदतें। कोई मिसाल दीजिए गंदी आदत का। हाँ, किसी की बुराई करना, चुगली करना, और कुछ, ईर्ष्या, ये सब विकारों के रूप हैं, गंदी आदतें। क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पांच मोटे विकार हैं। उसके बाद बाबा ने आज उस बात पर भी हम आएंगे, आलस्य, अलबेलापन की बात भी कही, फिर ईर्ष्या, द्वेष, सुस्ती, ये सब विकार हैं। लेकिन एक होती है गंदी आदतें। मिसाल के तौर पे हमको आदत नहीं है सामान को सही स्थान पर रखने की, उठाते यहां से हैं, रखते वहां पर हैं। अगर हमने मान लीजिए चाय बनाई और चाय बना करके वॉश बेसिन को गंदा छोड़ जाते हैं सिंक को, चाय गिर गई, उसको पोंछ के नहीं जाते, टेबल पे जहां चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ गिर गया, कुछ पीसेस गिर गए, कुछ हो गया, और हम उसको वहीं वैसा ही टेबल को छोड़ के चले जाते हैं, मान लीजिए, तो इस आदत को क्या बोले? अच्छी आदत? हाँ, अच्छी आदत नहीं है ना, ये गंदी आदत है। क्योंकि गंदगी फैलाने की आदत, ये गंदी आदत माना गंदगी फैलाने की आदत। हम हॉल में आ रहे हैं, हमने चप्पल कैसे रखा? चप्पल लाइन में ठीक से रखा या एक इधर एक उधर फेंक दिया? कैसे रखा? हमने उसकी सुंदरता को बढ़ाया चप्पल रखने से, या हमने इस तरीके से उतारा उसको कि उसकी सुंदरता, उसकी शोभा बिगड़ गई? इसलिए बाबा ने हमको टाइटल दिया है ब्राह्मण कुलभूषण। ब्राह्मण कुलभूषण माना ब्राह्मण इस कुल का श्रृंगार है, आभूषण, आभूषण माना जेवर, ब्राह्मण इस कुल का श्रृंगार हो। तो अगर हम श्रृंगार हैं, माना हमारी उपस्थिति ब्राह्मण कुल की शोभा को बढ़ाती है, मेरी उपस्थिति से ब्राह्मण कुल की शोभा बढ़ती है। तो मुझे पूछना है अपने आप से, मेरी उपस्थिति से शोभा बढ़ती है या डैश 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 घटती है? इसीलिए हमारा क्लास में बैठने का स्टाइल, उससे भी मेरी शोभा, हम स्कूल की, इस क्लास की शोभा को बढ़ाते हैं या उसको लापरवाही से घटा देते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा न केवल विकार हो परंतु कोई भी गंदी आदत भी न हो। अब क्लास हो रही है, कोई लेट आता है, आकर के कहीं इधर उधर बैठता है, तो किसी किसी की क्या नेचर होता है, क्या आदत होती है, वो अंदर आया तो उसको देख के जब तक वो बैठ नहीं जाएगा ना, तब तक उसको फॉलो करते रहेंगे, फॉलो कहाँ वो बैठ गया आकर के। तो वो सबका, या फिर क्लास में आपस में बातचीत करने की आदत, क्लास में बैठकर बातचीत करने की आदत, ये सब गंदी आदतें हैं। क्योंकि ब्राह्मण कुल की, ये ईश्वरीय क्लास है, ईश्वरीय क्लास की शोभा को ये कम कर देते हैं। हम कैसा ड्रेसअप करते हैं, कई बार हम बहुत ड्रेस अच्छा पहन लेते हैं लेकिन सॉक्स चेंज नहीं करते हैं, वो गंदे होते हैं, पाँव को साफ ठीक से नहीं करते हैं, वो गंदे होते हैं। अभी मैं आई बाबा के रूम में, मैं जा रही थी तो भाई ने बोला बहन जी सफाई हो रही है, क्योंकि कोई कोई बहने की चप्पल गुम हो जाती है तो नंगे पाँव यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, फिर उसी पाँव से बाबा के रूम में आ जाते हैं, तो इतना मिट्टी हो जाता है, सुबह शाम दोनों बार हमको सफाई करना होता है। तो अब बाबा कहते हैं पवित्रता, तो पवित्रता जो जहां तक ब्रह्मचर्य की बात है वो हमारी इंटरनल बात है, लोगों का उस कोई लेना देना नहीं है उससे, लोगों को अच्छा पवित्र रहते हो हमारा हमको क्या जाता है, हमको क्या जाता है, परंतु लोगों को क्या दिखाई देता है, लोगों को दिखाई देता है हमारा व्यवहार। ऐसे ही हमारे बोल, कोई न केवल गंदी आदत न हो परंतु कभी भी हमारे मुख से कोई गंदा बोल नहीं निकलना चाहिए। गंदा बोल किसको कहते हैं, गाली गलौच तो अभी ब्राह्मण देते नहीं, ऐसे गंदे शब्द तो उस रूप से यूज करेंगे नहीं ब्राह्मण तो, ऐसे लो लेवल के। लेकिन कोई भी शब्द जो किसी का अपमान कर दे, उसके सम्मान को गिरा दे, तो वो गंदा हो गया ना, वो गंदा हो गया। किसी को नेचुरली किसी को दुख भी देंगे अगर, तो वो उसी कैटेगरी में आ जाता है ना। तो क्रोध की जिसको बाबा ने बात कही कि क्रोध तो कांटा है, क्रोध भूत है। अब भूत तो फिर भूत ही है ना, हम तो देवता बन रहे हैं, हम तो फरिश्ते बन रहे हैं, तो फिर वो तो भूत हो जाता है। किसी को दुख देने वाला व्यक्ति तो फरिश्ते की तो बात ही नहीं उसके अंदर। तो इसलिए बहुत सूक्ष्म है, इसको हमको बहुत सूक्ष्मता से अंदर जाने की जरूरत है, उससे लोगों की सेवा होती है ना, उससे सेवा होती है लोगों की। क्योंकि लोगों को तो कहते हैं जो जड़ होती है ना वो दिखाई नहीं देती, दिखाई तो ऊपर वृक्ष और उस पर भी जो फल फूल लगे हैं वो दिखाई देते हैं ना जड़, लेकिन उसके लिए जड़ मजबूत चाहिए। जड़ अगर कमजोर है तो फल फूल आएगा नहीं। तो अगर मेरी पवित्रता की गहराई जो हमने बात की ना, वो पवित्रता अगर मेरी गहरी नहीं है तो ये फल फूल आएंगे नहीं, आएंगे नहीं। हम एक्सटर्नली किसी आदत को ठीक करना चाहें कर सकते हैं, अटेंशन देकर कर सकते हैं, और वो इतना ज्यादा अटेंशन हमको रोज रोज देना पड़ेगा तब शायद वो कर्म करते करते हमारा संस्कार बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने जड़ को ठीक कर दिया, उसकी गहराई को ठीक कर दिया समझ करके, तो ये हमारी जो बाहरी स्वरूप है, हमारा व्यवहार है, हमारी आदतें हैं, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। जैसे कोई कहता है कि ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता हूं, तो इम्पॉसिबल है मेरे लिए ये बात, क्यों, क्योंकि तो मेरे संस्कारों में ही नहीं है, ये मेरे संस्कारों में ही नहीं है, मेरे मुख से ये शब्द निकल ही नहीं सकता। कोई कितना भी मुझे प्रवोक करे, उकसाने की कोशिश करे, मेरे मुख से ये नहीं निकल सकता है, क्यों, क्योंकि वो अंदर से गहरा गया हुआ है। तो ऐसे ही बाबा ने इसलिए हमको कहा है कि स्वच्छता को अपने जीवन में हर पहलू में चेक करो। जगदीश भाई कहा करते थे कि अपना बेड भी देखो कितना साफ है। आप बेड को छोड़ के आए अपने कमरे में तो वो रजाई कंबल चादर जो है उसके ऊपर वो ठीक से खींच के बिछी हुई है या ऐसे ही सलवटें पड़ी हुई है उसके ऊपर। अब किचन को देखो, बाथरूम को देखो, रूम हमने ड्राइंग रूम साफ कर लिया अपना, गेस्ट आने वाला है, लेकिन बाथरूम गंदा है, किचन गंदी है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने ऊपर से ड्रेस तो चेंज कर ली लेकिन अंदर फेस तो साफ कर लिया, क्रीम वगैरह लगा दिया, लेकिन अंदर स्वच्छ नहीं है। स्वच्छता, तो स्वच्छता से ब्यूटी होती है, इसलिए बाबा ने कहा है प्यूरिटी इज रॉयल्टी। पवित्रता जो है वो रॉयल्टी, रॉयल माना राजाई, राजाई संस्कार है पवित्रता। और हम भी सो भी तो राजा सतयुग के बन रहे हैं ना, द्वापर के तो नहीं। प्यूरिटी रॉयल्टी है। बाबा ने हमारी वाइट ड्रेस यूं ही नहीं रखी, ये हमको बार बार याद दिलाती है प्यूरिटी, बार बार याद दिलाती है। बाबा ने कलर ड्रेस पहनना मना नहीं किया है, लेकिन जनरली देखने में आता है धीरे धीरे, चाहे घर में भी रहने वाले भाई बहन हैं, परंतु घर में रहने वाले भाई बहन भी धीरे धीरे उनका डार्क कलर से मन हट जाता है। और तीसरी बात बाबा ने कही, स्वच्छता माना कोई रस्ट, कोई जंक ना हो आत्मा के ऊपर। जैसे कोई भी चीज रस्टेड होती है हाँ, तो देख के लगता है ना, देख के अच्छा भी नहीं लगता है उसको। तो आत्मा भी अगर रस्टेड है, जंक लगी हुई है, तो वो जंक क्या है, जंक क्या है आत्मा पर? एक है गंदी आदतें, एक है गंदे संस्कार विकार हाँ, लेकिन जंक क्या है फिर हाँ, जंक क्या है? मुझे ऐसे लगता है जंक जो है ना, वो आत्मा ने जो पूर्व जन्मों में या इस जन्म में भी ब्राह्मण बनने से पहले या ब्राह्मण बनने के बाद कोई भी जो विकर्म किए हैं, उन विकर्मों का बोझा वो जंक है, वो जंक है, विकर्म से जंक चढ़ती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि विकर्मा जीत बनो, विकर्मा जीत बनो, और पूर्व के विकर्मों को विनाश करो। जो बात चल रही थी कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, तो पवित्रता के दो पहलू हैं यहाँ। एक है कि अभी से लेकर फ्यूचर तक मेरे से कोई विकर्म न हो, कोई पाप कर्म न हो, ये पवित्रता है, ठीक है ना। और लेकिन दूसरा उसका पहलू है कि जो मेरे ऊपर पुराना विकर्मों का बोझा है, वो बोझा साफ हो जाए, सब जंक उतर जाए, तो वो पूर्ण पवित्रता होगी। पुराना खत्म हो गया और नया चढ़ नहीं रहा, ठीक है ना, विकर्मों का बोझ तो वो खत्म हो, इसको कहेंगे स्वच्छता पवित्रता। तो क्या होता है कि अभी तो हम पवित्र बन रहे हैं, अपने आदतों पर, अपने बोल पर, अपने कर्मों पर ध्यान दे रहे हैं, मगर पुराना खाता खत्म नहीं हुआ अभी तक, इसलिए पूर्ण सुख शांति नहीं है। और पुराना खाता खत्म कैसे होगा, वो हम सबको पता है कि स्वच्छता योग से आएगी। लेकिन आप देखिए, हर एक अपने से देख पूछे अगर, योग के प्रति हम कितने केयरलेस हैं। योग का पीरियड शुरू होता है, हम कहते हैं अभी क्लास तो आधे घंटे बाद शुरू होगी ना, पहुंच जाएंगे तब तक, जैसे कि योग क्लास नहीं है, जैसे कि योग क्लास नहीं है। 5 बजे योग शुरू होता है, कोई बात नहीं, 5:30 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो वो हमारा पुराना विकर्मों का खाता अगर खत्म नहीं होगा, तो पूर्ण पवित्रता नहीं आएगी। और विकर्मों का पुराना खाता हमको फिर से आगे भी विकर्म करा सकता है, करा सकता है। इसलिए फिर पश्चाताप होता है कि मैं चाहता नहीं था मगर हो गया, मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता था मगर मुख से निकल गया। क्यों? क्योंकि वो पुराना जो था ना, उसने पुश करके हमसे करा दिया, इसलिए हमें उसको भी खत्म करना, उस पर अटेंशन बहुत चाहिए। तो इसलिए बाबा ने कहा आलस्य और अलबेलापन भी अपवित्रता है। अगर हम पढ़ाई में अलबेले हैं, आज पढ़ ली, नहीं पढ़ ली कोई बात नहीं, क्लास में चले गए, नहीं चले गए कोई बात नहीं, सुबह उठ गए ठीक है, नहीं उठे तो भी चलता है, अलबेलापन। तो ये अलबेलापन भी बाबा कहते हैं अपवित्रता है। सीरियस है ना बात, ये कितनी चीजों में कई बार हम अलबेले हो जाते हैं। फिर बाबा ने इसके साथ साथ बात आगे कही कि जो आप लोगों को एक सैंपल आपके सामने रखा है, एग्जाम्पल रखा है, वो रखा है कमल पुष्प जैसा जीवन। अब कमल पुष्प जैसा जीवन किसको कहते हैं? सिर्फ ब्रह्मचर्य को क्या? नहीं, हमारे नेत्र कमल जैसे हो, हमारा मुख कमल जैसा हो, हमारी मनवाणी, हमारे पांव, हमारे हाथ, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल, नयन कमल बोलते हैं लोग भक्ति में। तो कमल माना न्यारा और प्यारा। कल किसी से मैं बात कर रही थी तो किसी ने कहा मैं बहुत डिटैच्ड आत्मा हूं। मैंने कहा सिर्फ डिटैच्ड। हाँ, न्यारा और प्यारापन, बाबा तो कहते हैं दोनों का बैलेंस हो, न्यारा और प्यारा। तो अगर सिर्फ न्यारापन है तो ये पवित्रता नहीं है, सिर्फ प्यारापन है ये भी पवित्रता नहीं है। सिर्फ प्यारापन धीरे धीरे मोह का रूप ले लेता है, सिर्फ प्यारापन धीरे धीरे किसी के प्रति आकर्षण या किसी को अपने प्रति आकर्षण कराने का रूप ले लेता है। तो सिर्फ न्यारापन और सिर्फ प्यारापन ये पवित्रता नहीं है। कई दफा कई ब्राह्मण ये सोच के कि मुझे पवित्र बनना है अपने को अलग कर लेते हैं, मतलब मुझे बस कुछ नहीं चाहिए, मैं क्लास में आया, मैंने मुरली सुनी, बस खत्म, मेरे को किसी से लेना देना नहीं है, मेरी किसी से बातचीत नहीं है। वो उनकी जो पवित्रता है वो अधूरी है, वो सन्यासियों की तरह है, वो अपने को आइसोलेट करके अपनी पवित्रता को मेंटेन करना चाहते हैं। वो समझते हैं कि जब हम ब्राह्मणों के संग में आते हैं तो हमारी स्थिति खराब हो जाती है। कई लोग ये बोलते हैं कि जब मैं घर में रहता हूं मेरी स्थिति बहुत अच्छी होती है, जैसे ही क्लास में आता हूं मेरी अवस्था ही खराब हो जाती है, शक्ल ब्राह्मणों की देख के नहीं होना चाहते, वो नहीं होना चाहते। और कई इतना मिक्स होना चाहते हैं, धीरे धीरे वो एक्सट्रोवर्ट बाह्यमुखी हो जाते हैं, वो न्यारे नहीं बनते हैं, एक्सट्रीम है ना। तो इसीलिए बाबा ने हमको शब्द सिखाया है बैलेंस। तो व्हाट इज प्योरिटी, पवित्रता क्या है? पवित्रता बैलेंस में है। और अगर कमल पुष्प का मिसाल है तो न्यारापन और प्यारापन दोनों का बैलेंस। हम बहुत लविंग है परंतु उतने ही डिटैच्ड है, ना किसी से अटैच होते हैं ना किसी को अटैच करते हैं। अगर मुझसे कोई अटैच हो जाता है तो ये मेरा फेल्योर है। तो देखिए कितनी वंडरफुल बात है, वो कैसे? अगर मुझसे कोई अटैच होता है तो ये मेरा फेल्योर है। तो मतलब कि मैं एक्चुअली, जैसे बाबा कहते हैं ना, कई दफा गुरुओं का मिसाल देते हैं कि गुरु लोग अपने शिष्यों को अपने में इतना फंसाते हैं कि वो परमात्मा से विमुख कर देते हैं। तो ऐसे ही मैंने मान लीजिए किसी आत्मा की सेवा की, बहुत प्यार से की, बहुत दिल से की, बहुत भावना से की, लेकिन सेवा की और वो मुझ में ही फंस गया, अटक गया मुझ तक ही, उसके लिए भगवान बस मैं ही हूं। मैंने उसकी सेवा पूरी नहीं की, क्या मतलब कि मैंने उसका योग बाबा से नहीं लगवाया, उसका कनेक्शन बड़ों से नहीं जुटवाया, अपने तक सीमित रख दिया। तो वो मुझ पर ही आधारित है व्यक्ति। अब उसके अगर वो मुझ पर ही आधारित है, उसका बाबा से योग लगा नहीं, उसके तो विकर्म विनाश होंगे नहीं, मेरे से योग लगाने से तो होंगे नहीं। तो मैंने अपने में फंसा लिया उसको, क्योंकि मेरा मेरेपन का भान है, ये मेरा स्टूडेंट है, इसकी मैंने सेवा की है। कुछ ना कुछ तो कारण होता है, ऐसे ही नहीं फंसता। कोई वीकनेस होती है थोड़ी, कोई हमारा एक्शन ऐसा होता है, हमारी दृष्टि ऐसी होती है, हमारी फीलिंग्स अंदर से देही अभिमानी की नहीं होती। एक दफा बहुत अच्छी किसी ने मिसाल दिया था कि जैसे मान लीजिए कोई जंगल में जा रहा है और सामने से शेर आ रहा है, तो वो व्यक्ति अगर ऐसा लेट जाता है सांस लिए बिना, जैसे लाइक डेड, सांस भी नहीं लेता है, हिलता जुलता नहीं है, तो शेर भी उसको सूंघ के चला जाता है, उसको खाता नहीं है। शेर भी मुर्दे को नहीं खाता है, वो मार के खाता है। तो अगर मेरे प्रति किसी का आकर्षण है, मेरे प्रति माना मेरी देह के प्रति, तो माना मैं मरा नहीं हूं, जीते जी मैं देह अभिमान में हूं। देह अभिमान से हम मरे नहीं हैं, इसलिए कोई हम में फंस जाता है। और अगर हम जीते जी मर गए देह अभिमान से, फिर कोई फंसेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं पवित्रता की गहराई किस में है, पवित्रता की गहराई सोल कॉन्शियसनेस में है। आत्मिक स्मृति, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मिक, कितनी बार 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 हमको ये प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपने को याद दिलाना पड़ता है मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, जिससे हम बात कर रहे हैं वो कौन है, कौन है। हमें पता है मैं आत्मा हूं, लेकिन आत्मिक स्मृति वो स्थिति नहीं होती है। इसलिए बाबा ने एक दफा एक मुरली में कहा था पवित्रता माना साधारण, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प वचन कर्म से मुक्ति। साधारण, व्यर्थ और नेगेटिव, इन तीनों संकल्प वचन कर्म, इनसे मुक्ति। हमारा कभी कभी नेगेटिव नहीं होता है, हो सकता है व्यर्थ भी नहीं, मगर साधारण स्टेज होती है। उसको भी बाबा ने कहा था ये भी अपवित्रता है। हो सकता है, लेकिन वो खत्म हो जाएगा अगर आप रियल ट्रस्टी हैं तो। आप वो एक्सपेक्टेशन नहीं रहेगा आपसे फिर। हमने ऐसा अनुभव किया है कि जितना आप डिटैच हो जाते हैं, डिटैच का मतलब ये नहीं कि मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप डिटैच हो जाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फुलफिल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये मालूम है कि ये सब बाबा के बच्चे हैं, आप उस स्थिति में हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हुए भी क्योंकि आप डिटैच्ड हैं, तो धीरे धीरे उनको समझ में आ जाता है कि इनसे, ये तो अब भगवान के हैं, इनसे कोई अधिक आशा रखने की जरूरत नहीं। हाँ, वहां से भी नहीं आएंगे। इसलिए बाबा ने मिसाल दिया है जब हलवा तैयार हो जाता है तो वो किनारे छोड़ देता है, डिटैच हो जाता है। तो जब हम पवित्र हो जाते हैं तो किनारे से अलग हो जाते हैं, मतलब अटैचमेंट नहीं रहता है, वहां है मगर वहां नहीं है, वहां है मगर वहां नहीं है, हम रहते हुए भी अबव हैं। इसीलिए बाबा कमल का मिसाल देता है कि कमल की पूरा परिवार होता है ना, आप सबको मालूम होगा कमल का पानी के अंदर पूरा परिवार होता है, कमल ककड़ी होती है, कमल का वो गड्ढा होता है, बहुत लंबी सी डंडी होती है, कमल उनके साथ कनेक्टेड होता है, लेकिन कमल का जो पुष्प है कनेक्टेड होते भी ऊपर होता है तो कनेक्टेड, डिसकनेक्टेड नहीं है। इसीलिए कमल, बाबा ने तो रोज भी बोल सकता था ना कि कांटे में रहते फूल बनो, कमल का क्यों, क्योंकि कमल उन पूरे परिवार से कनेक्टेड है, अटैच नहीं है। तो हम कनेक्टेड हैं मगर अटैच नहीं है, और कनेक्टेड भी इसलिए हैं क्योंकि हमें उनकी सेवा करनी है, लक्ष्य हमारा सेवा का है, चाहे बिजनेस में जाते हैं, चाहे जॉब पर, चाहे घर में, चाहे कहीं पर भी, हम जहां पर भी हैं हम सेवा पर हैं। और सेवा कोई सिर्फ ज्ञान से तो नहीं होती है ना, सेवा तो स्थिति से होती है। और सचमुच में आपको ऐसा अनुभव होगा, जितना अंदर से वो पवित्रता आती जाएगी उतना आप जहां बैठेंगे लौकिक लोगों के साथ भी, तो वो लोग भी आपके साथ बैठ के शांति महसूस करेंगे, और उनको आपसे कुछ ऐसी वैसी बहुत ग्रॉस बातें करने का मन नहीं होगा, क्या क्या बात करें, क्योंकि आपको स्थूलता में इंटरेस्ट नहीं है, उनको भी नहीं आएगा, नहीं आएगा। वो हमसे तब करते हैं क्योंकि हमको इंटरेस्ट है, हम कितना भी कहें हमको इंटरेस्ट नहीं है, वो करेंगे नहीं अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं। कचरा वहां फेंकते हैं जहां कचरा दान है या ऑलरेडी कचरा पड़ा हुआ है ना, तो वहां दूसरे भी लाके कचरा फेंक देते हैं ना, कोई किसी की किसी ने कहा निंदा चुगली करना, कोई तभी करता है हमारे साथ जब हमारे अंदर वो थोड़ी सी गंदगी का स्थान बना हुआ है, ठीक है ना। तो पवित्रता की गहराई जो है, उसकी जो रूट है ना, उसका रूट इसी में है, आत्मिक स्मृति में। ब्रह्मा बाबा ने यूं ही पहले दिन से ये प्रैक्टिस शुरू नहीं की, मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं, लिख लिख कर लिख लिख कर लिख लिख कर, ऐसा नहीं मैकेनिकली लिख रहे हैं मैं आत्मा हूं, परंतु लिखते हुए मैं आत्मा हूं साथ साथ फील कर रहे हैं, मैं आत्मा हूं, फीलिंग, तब उससे वो आत्मा ऑटोमेटिकली फ्री हो जाती है, सब बंधनों से मुक्त हो जाती है, मुक्त हो जाती है। तो इसलिए पवित्रता क्या है, फ्रीडम, मुक्ति है। शिव बाबा परम पवित्र है और पतित पावन है, तो शिव बाबा को कोई आता है बाबा लेकिन चला जाता है, बनता नहीं है, बनता नहीं है, ऑलवेज फ्री, ऑलवेज लिबरेटेड, सदा मुक्त है। इसीलिए सतयुग में भी हम लोग शरीर लेते हैं मगर शरीर के बंधन में नहीं होते हैं, शरीर हमारे लिए वहां बंधन नहीं है, शरीर है लेकिन आत्मा समय होने पर खुद ही बैठे चली गई, शरीर छोड़ दिया। इसकी हमको प्रैक्टिस की बहुत 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 आवश्यकता है। उसके साथ साथ बाबा जब कभी पवित्रता की बात करते हैं तो बाबा कभी हंस का मिसाल देते हैं, हमको टाइटल भी बाबा ने होली स्वॉन्स होली हंस का टाइटल दिया है। तो हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, हंस की दृष्टि तो मोती पर जाती है, मेरी कहाँ जाती है, मेरी दृष्टि कहाँ जाती है। मेरी दृष्टि आत्मा होती है, बाबा कभी कहते हैं आत्मा मणि है, शरीर सर्प है। तो शरीर पर दृष्टि जाती है या मणि पर दृष्टि जाती है, मोती पर जाती है या कंकर पर जाती है, अवगुणों पर जाती है या गुणों पर जाती है, मेरी दृष्टि। और अगर प्योरिटी रॉयल्टी है तो रॉयल रॉयल्टी में तो कोई कंकर पत्थर से खेलता नहीं है, उसकी दृष्टि उस पर नहीं जाती, तो उसके लेवल की चीज नहीं है वो। मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है, मेरा इंटरेस्ट बताता है कि मेरे में कितनी रॉयल्टी है, कितनी रॉयल्टी है। एक दफा बाबा ने कहा था, जोर से हंसना और जोर से बोलना भी अपवित्रता है। जोर से हा 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 हा, तो जैसे हम लोग बचपन में रामलीला देखने जाते थे तो वो रावण ऐसे ही हंसता था, तो जोर से हंसना और जोर से बोलना ये भी अपवित्रता है। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि जितना हमारे में पवित्रता रियल आ जाती है, ऑटोमेटिकली आपकी आवाज भी बहुत सॉफ्ट हो जाती है, आपका चलना भी बहुत सॉफ्ट हो जाता है, चलने में आवाज नहीं होगी, चलने में भारीपन नहीं होगा, लाइटनेस होगी, लाइट जैसे फरिश्ते चलते हैं, लाइट होते जाएंगे। आपका ये बॉडी का मतलब, बॉडी तो है, बॉडी का अपना वेट तो है, किसी का 50, 60, 70 जितना भी किलोग्राम होगा, लेकिन वेट होते भी वेटलेसनेस, बहुत लाइट, हार्ड नहीं, बहुत सॉफ्ट हो जाता है। कोई भी चीज को रखना, उठाना, बैठना, खड़ा होना, दरवाजे को बंद करना, मतलब उसमें बहुत जेंटलनेस आ जाता है। हमारा शरीर तो 5 तत्व तो का बना है शरीर हमारा, तो शरीर में और अभी तो तत्व तमो प्रधान है ना, और सतयुग में भी शरीर तो होगा, लेकिन शरीर ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ग्रॉस नहीं होगा, जिसको बाबा कहते जैसे कि ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसपेरेंट तो सूक्ष्म बदन में होता है, लेकिन वहां जैसे ट्रांसलूसेंट, ऐसा ग्रॉस नहीं होगा, तत्व भी कंपैरेटिवली सटल होंगे, सूक्ष्म होंगे। और जितना हम अभी पवित्र बनते जाते हैं तो हमारे शरीर में भी वो सटलनेस, वो सूक्ष्मता आती जाती है, मतलब मैटर पर भी हमारी पवित्रता का असर पड़ता है। और इसीलिए जब आप ऐसी पवित्रता की शक्ति से किसी के भी संपर्क में आते हैं तो उसको फौरन फील करते हैं कि ये साधारण नहीं है, है तो साधारण मगर साधारण नहीं है, कुछ अलग है, कुछ अलग है। तो इसलिए आप देखिए कि कितना हम अपने जीवन में, हमारा पढ़ाई का लक्ष्य ही वास्तव में ये है, संपूर्ण पवित्र जीवन, संपूर्ण निर्विकारी जीवन, लक्ष्य ही तो ये है। इसी लक्ष्य को लेकर हम रोज पढ़ते हैं, लेकिन कितना पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं सचमुच में। कई दफा हम समझते हैं कि मुरली सुन लेना ही पढ़ाई है, सिर्फ मुरली सुन लेना तो पढ़ाई नहीं है ना, ये तो पढ़ाई का एक हंड्रेड पार्ट भी नहीं है, है ना, हंड्रेड पार्ट भी नहीं है। तो मुरली पढ़ाई तो असल में मुरली सुनने के बाद शुरू होती कि मैंने क्या सुना, पावन ने मेरे लिए क्या कहा। तो कितना हम उसमें अटेंटिव हैं, कितना हम इसको रियलाइज कर रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे सदा याद रखो कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ब्राह्मण हूं, और मैं ब्राह्मण पवित्र दुनिया की स्थापना करने के निमित्त हूं। मेरा जन्म पवित्रता से हुआ है, मेरा जीवन पवित्र जीवन है, और मेरा कर्तव्य भी पवित्र दुनिया की स्थापना करना है। तो हमें ये देखना है कि दुनिया जिसमें शुरू में चलो सतयुग में 9 लाख लोग होंगे, त्रेता युग के अंत तक 33 करोड़ होंगे, लेकिन मेरा कर्तव्य पवित्र दुनिया की स्थापना करना है। तो मेरे जो चारों ओर दुनिया है, मेरे चारों ओर जो दुनिया, छोटी सी दुनिया, छोटा सा संसार, वो कितना पवित्र होता जाता है। मेरा चारों ओर जो संसार है, अर्थात वो लोग जो मेरे संपर्क संबंध में हैं, मेरे चारों ओर का वातावरण, छोटी छोटी चीजों से लेकर के जिस टेबल पर बैठकर हम काम करते हैं, मान लीजिए ऑफिस में काम करते हैं, फाइल्स रखी हैं वहां, चीजें रखी हैं, मेरे चारों ओर का ये वातावरण कितना स्वच्छ और पवित्र है, शुद्ध है। तो सेल्फ चेकिंग, इसलिए पवित्रता की जहां बात आती है तो उसमें आता है कि अटेंशन ऑन द सेल्फ, मेरा ध्यान ही मेरे ऊपर है, मेरा ध्यान मेरे ऊपर है, दूसरे क्या कर रहे हैं उस पर नहीं, मेरा मेरे पर ध्यान है। ये पवित्रता का स्लोगन है कि जब हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी, जब हम बदलेंगे तो दुनिया बदलेगी। और अगर हमारा ध्यान दूसरों को बदलने पर है तो ये अपवित्रता है, ठीक है ना? अगर मेरा ध्यान मुझे बदलने पर है, मुझे अपने आप को बदलना है, तो ये पवित्रता है। मेरा अटेंशन ही मुझ पर है। तो बातें तो बहुत सिंपल सिंपल हैं, बात सारी करने की है, हम कितना करते हैं उस चीज को। कभी बाबा कहते हैं, अपने को समझो कि मैं यज्ञ रक्षक हूं, और इस यज्ञ की रक्षा की जो मतलब साधन है वो क्या है? यज्ञ स्थापन हुआ पवित्रता के बल से, और यज्ञ की रक्षा भी तो पवित्रता से ही है। जितना हमारा प्यूरिटी का स्ट्रेंथ बढ़ता है, उतना यज्ञ प्रोटेक्टेड है, यज्ञ की पावर बढ़ती है। अगर हम थोड़ा भी लूज हो जाते हैं प्यूरिटी में, किसी भी कॉन्सेप्ट में, जिसे मान लीजिए कुछ दिन पहले मुझे ख्याल इस चीज का आया था कि पवित्रता का एक पहलू है क्षमा करना। जैसे देखिए, मान लीजिए किसी ने ज्ञान में आने के पहले या ज्ञान में आने के बाद, और हर एक व्यक्ति के साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें कभी किसी ने हमारा दिल तोड़ दिया, दुख दे दिया, कुछ ऐसा वैसा बोल दिया, कुछ इंसल्ट कर दिया, कुछ मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ है हर एक के साथ, और वो जो दर्द है वो चोट दिल में रह जाती है, वो लगी हुई है ना। तो इसलिए कहते हैं कि आज की दुनिया में सबके दिल टूटे हुए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने क्रैक उसमें ला दिया है, और किसी ने तो उसको तोड़ ही दिया है। तो अब देखिए, कोई भी चीज जो टूटी हुई होती है, उसको आप कोई कांच की कोई कप है उसको आप कोई फिक्स लेके चिपका भी दीजिए, तो क्रैक तो फिर क्रैक ही दिखाई तो देता है ना, उसकी ब्यूटी तो खत्म हो जाती है। कोई भी चीज में जोड़ आ जाता है, स्टिचेस लग जाते हैं, तो उसकी ब्यूटी तो खत्म हो जाती है। तो अब हम कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि नहीं नहीं बाबा तो कहता है पास्ट इज पास्ट, हमने तो भुला दिया, बस डॉट लगा दिया पास्ट को, बीती हुई बात को भूल जाओ। लेकिन हम कभी भी भूल नहीं सकते जब तक हम उस व्यक्ति को क्षमा ना कर दें, फॉरगिव ना कर दें। इसलिए कहते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, फॉरगिव करो तो फॉरगेट होगा, और अगर नहीं होता है, वो नहीं भूलता है, अभी भी हम कभी उस घटना को जो 10 साल पहले हुई थी याद करते हैं तो हमारी आंखें अभी भी गीली हो जाती हैं, मन भारी हो जाता है, तो मतलब क्या हुआ कि वो जख्म अभी भी है, और अगर जख्म है तो वो ब्यूटी नहीं है ना। अभी कहीं कट लगा हुआ हो यहां पर तो वो ब्यूटी तो खत्म कम हो जाती है ना, टूटी हुई चीज माना इनकम्प्लीट चीज, तो वो भी तो संपूर्णता नहीं है उसके अंदर। तो हम कैसे उस जख्म को, उस इंजरी को पूरा रिकवर करें, उसका तरीका है कि हम उसको फॉरगिव कर दें उस व्यक्ति को, और अगर हमसे कोई भूल हुई है तो क्षमा मांग लें, हिम्मत रखें। जी हाँ जी, फूड, हाँ वो अभी करते हैं बात। हाँ बिल्कुल, तो एक ये भी पहलू है पवित्र, यूं तो पवित्रता के बहुत पहलू हैं, भोजन है, संग है, हम बुक्स कौन सी पढ़ते हैं, फिल्म्स देखते हैं या नहीं देखते हैं, कोई पिक्चर्स देखते हैं वगैरह वगैरह। अगर हाँ क्या बोला, क्लास में झुटका लगाते हैं, तो वो आती इसलिए है ना, क्योंकि गड़बड़ काम करते हैं कुछ ना कुछ तो फूड की तो बात है ही, बाबा ने इसमें अलग अलग तरह से कहा हुआ है कि अगर मान लीजिए जहां पर आप अवॉइड कर सकते हैं मैक्सिमम आप अवॉइड कीजिए कोई ना कोई युक्ति से, लेकिन कई स्थान ऐसे होते हैं जहां आपको आप मना नहीं कर सकते। मान लीजिए कोई पानी का ग्लास लाया या जूस या फ्रूट या कोई चीज लाया है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके सामने फ्रूट रखा उन्होंने, तो आप फ्रूट को खुद ही लेकर के, संतरा है या एप्पल है उसको कुछ काट के खुद ही, तो और भी जो लोग बैठे हैं चलो उनको सामने भी कहें चलिए अच्छा चलो एक मिनट हम भगवान की याद में बैठते हैं, एक मिनट हम साइलेंस में बैठते हैं, और एक एक पीस औरों को भी ऑफर कर दीजिए, तो उस समय उसको लेकर के उसको बैठ के एकदम मना करेंगे, हो सकता है व्यक्ति को अच्छा ना लगे, चलो वो भोजन नहीं खिला रहा, वो कहता है फ्रूट ही तो है इसमें क्या है, ये तो हमने नहीं बनाया, ये तो मार्केट से ही खरीदा है, आप भी तो मार्केट से खरीद के खाते हैं फ्रूट, हाँ ऐसा बोलता है। तो चलिए अगर हम लेना भी पड़ता है, हम एकदम मना नहीं कर सकते, तो उसमें फिर देखना चाहिए कि हम एक अंगूर ही उठा लेते हैं बाबा को याद करके उसको ले लेते हैं, या कोई ऐसा बड़ा फ्रूट है तो उसको खुद ही काट के सबको बाबा को याद करके सबको ऑफर कर देते हैं, और एक पीस हम भी ले लेते हैं, तो ऐसा होता है। तो मतलब कभी ना कभी कोई युक्ति अपनानी पड़ती है। मुझे याद है एक बार हम दिल्ली में गवर्नर को राखी बांधने गए थे, तो वो गवर्नर कहे कि ऐसा कैसे होगा कि बहने भाई के घर में आए और कुछ खाए ही नहीं, तो उसने मतलब कुछ मिठाइयां मंगवाई हुई थी, ओके मैं तो आपको जाने नहीं दूंगा ऐसे, मतलब हम तो आपको जाने नहीं देंगे, खाना ही पड़ेगा, हम तो नहीं अभी अभी हम खाकर आए हैं, हमारा टाइम है खाने का, कई तरीके की बातें हमने बोला, और लेकिन वो फिर भी माने नहीं कि नहीं 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 ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो अल्टीमेटली हमने कहा अच्छा ठीक है हम ले जाते हैं अपने साथ, हम फिर खा लेंगे, फिर उसको मानना पड़ा, तो एक नैपकिन में हमने एक दो पीस, जो भी जितने भी लोग थे, हमने हर एक ने एक एक पीस ले लिया और एक नैपकिन में रख लिया उसको। चलो वो भी खुश हो गया और हम भी अपने नियम को भी हमने कायम रख लिया। तो समय को देखना होता है, सिचुएशन को देखना होता है, क्योंकि हम किसी को दुख भी नहीं देते लेकिन अपने नियम को भी नहीं तोड़ते हैं, दोनों ही बातें हैं। तो हाँ 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 आप खुद बनाइए। नहीं 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 नहीं, आप समझा दीजिए उनको, धीरे धीरे समझ जाते हैं वो लोग। ये सिर्फ आपकी दृढ़ता चाहिए, अगर आप में दृढ़ता कम है ना तो उनको बुरा लगता है। हमारे साथ ये सब हुई है परिस्थितियां बहुत, एक नहीं 46 इयर्स ज्ञान में, तो शुरू शुरू में कितनी बातें। आजकल तो लोग इन बातों को ज्यादा माइंड नहीं करते हैं, पहले तो फैमिली रिलेशंस ज्यादा क्लोज हुआ करते थे, अभी इतना क्लोजनेस नहीं है और ये सब बातें होती थी। लेकिन अगर हमने अंदर से संकल्प कर लिया तो मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ कि जब हम छोटे थे ज्ञान में आके, हमको शायद अभी 2 ही साल हुए थे, हमारे मामा की शादी थी और हम वहां गए, तो हमारे घर में के ट्रेडिशन के अनुसार जो पहले एंगेजमेंट सेरेमनी होती है वो एक वीक पहले या कितना दिन पहले, तो उसके बाद घर में ब्राह्मण ही आके खाना बनाता है, लौकिक ब्राह्मण, जब तक शादी हो तब तक वो खाना बनाता है। और हम लोग जब गए तो हम तो नहीं खाते थे, उस ब्राह्मण कहता था क्यों आप मेरे से भी ऊंचे ब्राह्मण हो क्या, आप मेरे हाथ का खाना नहीं खाते हो। तो वो मम्मी, मैं और हमारी सिस्टर, हम लोग नहीं खाते थे। और तो हम तो हंस देते थे, हम लोग बच्चे थे क्योंकि, और कहते हाँ हम आपसे भी ऊंचे हैं, तो वो माइंड नहीं करता था। और फिर उसके बाद मम्मी बनाती थी अलग से। लेकिन एक दिन वो पूरा रूम मिठाइयों से वहां जब भरा हुआ था और हम लोग कुछ नहीं खाते थे उसमें से, तो हमारी नानी इतना रोई कि वो अनकॉन्शियस हो गई कि छोटे छोटे बच्चे हैं ये, तुम लोग खाते नहीं हो, घर में इतना सामान है, कुछ नहीं खाते हो। हम कहे खाते हम नहीं है, दुख आपको क्यों हो रहा है, तो हमको होना चाहिए, आप क्यों दुखी हो रही हैं। वो इतना रोई कि वो अनकॉन्शियस हो गई। अब आप इमेजिन कीजिए, वो हमारे मामा जी फिर उनको होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, उनको कुछ, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोल के हमारे मामा जी से पानी नहीं लिया और कहा उनको, मुझे बुलाने के लिए, मैं सामने बैठी थी, उसको बुलाओ, मेरे हाथ से पानी लिया उन्होंने। और फिर उसके बाद वो होश में आ गई और मतलब उसके बाद चलता रहा ये सब प्रोसेस। और धीरे धीरे क्या हुआ, मम्मी हमारी खाना बनाती थी हम तीनों के लिए, मैं और सिस्टर और मम्मी, लेकिन धीरे धीरे हमारे ब्रदर के मैं भी आपका ही खाऊंगा, फादर के मैं भी यही खाऊंगा, हमारा ग्रुप धीरे धीरे बड़ा होता चला गया कि मतलब लोगों ने समझ लिया ठीक है इसमें क्या है, खाओ, बात ये अभी चलो नहीं खाना, इसमें क्या है, इस बात को एक इश्यू बनाकर क्यों बैठ जाए। लेकिन बात यह कि जितना अपने में दृढ़ता होती है ना, और हम कुछ ज्यादा जिसको कहना चाहिए ऐसी चीज नहीं, भी सिंपल है, एक सब्जी बना लिया, चपाती बना लिया, खा लिया, दैट्स ऑल, हमको और कुछ नहीं चाहिए, हमको कोई वैरायटी नहीं चाहिए, सिंपल बना के खा लेते हैं, तो फिर ठीक हो जाता है। हाँ, परेशान मत होइए, अभी से संकल्प दृढ़ कीजिए तो ठीक हो जाएगा, दृढ़ता में सफलता है।
हाँ, बहुत बहुत थैंक्स, योग का भी टाइम हो रहा है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड आप योग भी
कंडक्ट। ठीक है ना, बात क्लियर है ना इस चीज की, कि मतलब सब अपने पर डिपेंड करता है, कोई कितना भी कुछ कहे ना, जितना हमारे में सत्य तो सत्य ही है, अल्टीमेटली लोग समझ जाते हैं बात को। ओके, ओम शांति।